ये आकाशवाणी है, अब आप अभिषेक कपिल से समाचार सुनिए। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। नौवहन महानिदेशालय ने कहा है कि पाकिस्तान के झंडे वाले किसी भी जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब भारतीय झंडे वाले जहाज भी पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर नहीं जाएंगे। ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक लागू किए गए हैं। ये निर्णय भारतीय परिसंपत्तियों, कार्गो और संबंधित बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्वजनिक तथा जहाजरानी क्षेत्र के हित में लिया गया है। इससे पहले भारत ने एक और सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में ये प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध में किसी भी प्रकार की छूट के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी डाक सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। संचार मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने हवाई और सड़क दोनों मार्गों से डाक और पार्सल सेवा को निलंबित करने का फैसला किया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। इनमें सिंधु जल संधि पर रोक लगाना, अटारी सीमा को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों को निकालना और राजनयिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत सभी अफ्रीकी देशों के साथ पारस्परिक लाभकारी और स्थायी साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अंगोला के राष्ट्रपति जो आओ मनुएल गोंजाल्वेस लोरेंसो से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की अंगोला सहित अफ्रीकी देशों के साथ विशेष मित्रता है। उन्होंने अफ्रीका में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में अंगोला द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की प्रगति का आकलन करने के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारी निर्यात, जैविक उत्पादन और गुणवत्ता वाले बीजों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख संगठन के रूप में सेवा करने के उद्देश्य से 2023 में 3 राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज देश भर में 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश में 13 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 आयोजित करेगी। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि सुरक्षित और संरक्षित परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी तैयारियां और व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। परीक्षा के लिए 22,70,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के पवित्र कपाट आज सुबह 6 बजे पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ खोले जाएंगे। भगवान उद्धव और गरुड़ की उत्सव डोली और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी कल बद्रीनाथ धाम पहुंच गई है। वहीं भगवान कुबेर की उत्सव डोली रात्रि विश्राम के लिए बामणी गांव स्थित मां नंदा देवी मंदिर पहुंच गई है। आकाशवाणी से कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। इसे FM गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी लाइव न्यूज चैनल पर सुना जा सकता है। साथ ही ये आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा। वेव्स 2025 में भारतीय सिनेमा पर बियॉन्ड नॉस्टैल्जिया द बिजनेस ऑफ रिस्टोर्ड क्लासिक्स शीर्षक से एक व्यवहारिक पैनल चर्चा आयोजित की गई। इस सत्र में दर्शकों के लिए प्रसिद्ध फिल्म विश्लेषक तरण आदर्श ने श्रेष्ठ सिनेमा की समझ विकसित करने के महत्व, चुनौतियों और भविष्य पर फिल्म उद्योग के दिग्गजों के साथ चर्चा की। फुटबॉल में FC गोवा ने भुवनेश्वर में जमशेदपुर FC को फाइनल मुकाबले में 3-0 से हराकर कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब जीत लिया। FC गोवा के लिए बोर्जा गोंजालेज ने 2 और डेजान डेंजरिक ने 1 गोल किया। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।